एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 2000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां सोचिए ना इंटरनेट था ना सोशल मीडिया, फिर भी इंसानी परेशानियां शायद वैसी ही थीं जैसी आज है।
हाँ, कुछ हद तक तो थी ही।
तो आज हम बात करेंगे एक रोमन सम्राट की। उनकी एक निजी डायरी है जिसे दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है,
मार्कस ऑरेलियस।
हाँ, मार्कस ऑरेलियस। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2000 साल पुरानी बातें, वो भी एक सम्राट की लिखी हुई, क्या वो आज हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस तनाव वाली लाइफ में वाकई कोई मदद कर सकती हैं?
ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशंस कोई कोई आम किताब है ही नहीं। ये तो मार्कस ऑरेलियस के खुद के लिए लिखे गए नोट्स थे।
पर्सनल नोट्स।
अच्छा,
हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इसमें जो सोच है, जो टेक्निक्स हैं, वो आज भी उतनी ही, बल्कि मैं तो कहूंगी शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट लगती हैं।
ज्यादा रेलेवेंट कैसे?
क्योंकि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये मुश्किल वक्त में, आपाधापी में मन को शांत कैसे रखें, जिंदगी का मकसद कैसे समझें, चुनौतियों का सामना कैसे करें, इसका एक तरह का प्रैक्टिकल गाइड है।
एक प्रैक्टिकल गाइड।
बिल्कुल। तो आज हम इसी खजाने वो थोड़ा टटोलेंगे, देखेंगे कि इसमें से हमारे लिए क्या निकल सकता है।
बिल्कुल, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उस शख्स के बारे में थोड़ी बात हो जाए जिसने ये सब लिखा, मार्कस ऑरेलियस।
हाँ, तो मार्कस ऑरेलियस ये कोई, मतलब, कोने में बैठ के सिर्फ लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे।
नहीं थे?
नहीं, वो 161 से 180 एडी तक रोमन साम्राज्य के सम्राट थे। सोचिए, उस जमाने के शायद सबसे शक्तिशाली इंसान।
सबसे शक्तिशाली, और उन्हें रोम के पांच अच्छे सम्राटों में गिना जाता है ना?
हाँ बिल्कुल, जो अपनी काबिलियत और अपने न्याय के लिए जाने जाते थे।
और शायद यही बात उनके विचारों को ज्यादा वजन देती है कि उन्होंने ये सब किसी शांत यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं लिखा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पूरा शासनकाल युद्धों से भरा था, खासकर वो जर्मन कबीलों के साथ लंबे युद्ध चले। फिर वो भयानक एंटोनिन प्लेग आया, एक महामारी जिसने, कहते हैं, साम्राज्य की बहुत बड़ी आबादी खत्म कर दी थी।
बाप रे।
और निजी जिंदगी में भी कम दुख नहीं देखे उन्होंने। अपनी पत्नी को खोया, और कहते हैं उनके 13 बच्चों में से शायद 8 या उससे भी ज्यादा बचपन में ही गुजर गए।
ओ, तो मतलब उनके विचार सिर्फ किताबी नहीं है, वो जिंदगी की, जिसे कहते हैं ना, भट्टी में तप कर निकले हैं।
बिल्कुल सही कहा। ये मेडिटेशंस उनकी पर्सनल डायरी हैं। उन्होंने यूनानी भाषा में लिखी थी, और ज्यादातर तब लिखी जब वो सरहदों पर फौजी कैंप में होते थे।
अच्छा, लड़ाई के मैदान में।
हाँ, ज्यादातर वहीं। इसका असली टाइटल भी था ता आइस हेउटन, जिसका मतलब है खुद के लिए। ये कभी छापने के इरादे से लिखी ही नहीं गई थी।
इसीलिए शायद इतनी सच्ची लगती है।
हाँ बिल्कुल, कोई बनावट नहीं है, बस उनके अपने एकदम कच्चे ईमानदार विचार, जैसे वो खुद से बात कर रहे हो, खुद को समझा रहे हो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो उनका जो अधिकार है वो किसी डिग्री या अकादमिक उससे नहीं आता, वो आता है सबसे ऊंचे लेवल की जिम्मेदारी निभाने और मुश्किल हालात को जीने के अनुभव से।
समझ गया। तो फिर ये किताब मेडिटेशंस आखिर है क्या चीज? जैसा आपने कहा, कोई कहानी तो है नहीं,
नहीं,
ना ही कोई सिस्टमैटिक फिलॉसफी की किताब है।
नहीं,
ये मार्कस ऑरेलियस के अपने लिए लिखे नोट्स हैं, छोटी छोटी बातें, खुद को याद दिलाने के लिए कुछ अभ्यास। और इनका मकसद था स्टोइक फिलॉसफी, स्टोइक दर्शन के जो सिद्धांत थे,
स्टोइक दर्शन,
हाँ,
उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए।
अच्छा, तो इसका मतलब इन नोट्स का मूल आइडिया क्या है, किस चीज पे जोर देते हैं वो?
देखिए, मूल तर्क ये है कि एक अच्छा, सार्थक और शांत जीवन वो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता।
अच्छा, किस पे करता है फिर?
वो निर्भर करता है हमारे अपने मन को साधने पर, तर्क यानी रीजन और प्रकृति के नियमों के हिसाब से जीने पर। और शायद सबसे बड़ी सीख इसमें यही है कि हम बाहरी घटनाओं, जो हमारे काबू में है ही नहीं, और उन घटनाओं पर हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं, जो हमारे काबू में है, इनके बीच फर्क करना सीखें।
ये तो बहुत जरूरी बात है।
हाँ, ये स्टोइक सोच का, आप कह सकती है, सेंट्रल पिलर है।
हाँ, और इसी आइडिया के आसपास मार्कस बार बार कुछ खास थीम्स पर लौटते हैं, जैसे अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें काबू में रखना,
खासकर गुस्सा, दुख, बेचैनी जैसी भावनाएं।
हाँ, फिर मुश्किल लोगों से कैसे निपटा जाए, ये तो हम सबकी समस्या है।
बिल्कुल।
फिर मौत की सच्चाई को याद रखना, वो जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं।
मौत का स्मरण।
समाज के प्रति, दूसरे इंसानों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, और ये समझना कि बाहरी घटनाओं से ज्यादा उन घटनाओं के बारे में हमारे अपने फैसले, हमारी सोच हमें कैसे प्रभावित करती है।
सही। कुल मिलाकर ये पर्सनल रेजिलियंस, मतलब अंदरूनी मजबूती बनाने का एक तरह का खाका है।
बिल्कुल। तो किताब को 12 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें बुक्स कहते हैं। पहली बुक थोड़ी अलग है ना?
हाँ, पहली बुक थोड़ी अलग है। उसमें मार्कस कोई बड़ा सिद्धांत नहीं बताते। वो शुरुआत करते हैं शुक्रिया अदा करने से, उन लोगों का जिनसे उन्होंने कुछ सीखा।
जैसे?
जैसे अपने दादा, अपनी माँ जिनसे कहते हैं सादगी सीखी, अपने गुरु जैसे एक थे जूनियस रूस्टिकस जिन्होंने उन्हें एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों के बारे में बताया, और अपने गोद लेने वाले पिता सम्राट एंटोनिनस पायस, उन्हें वो एक अच्छे शासक का आदर्श मानते थे।
ये शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है ना, कोई दावा नहीं बस आवार।
हाँ, ये दिखाता है कि वो खुद को सीखने वाला मानते थे, उनमें विनम्रता थी, और ये एक तरह से पूरी किताब की नींव भी रखता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम दूसरों से सीखते हैं और प्रभावित होते हैं।
सही बात है।
बिल्कुल। फिर बुक टू और थ्री में वो सुबह की तैयारी पर जोर देते हैं, मतलब दिन की शुरुआत में।
सुबह की तैयारी किस तरह की?
वो खुद को याद दिलाते हैं कि आज उन्हें शायद मतलबी लोग मिलें, एहसान फरामोश मिलें, धोखेबाज मिलें।
अच्छा, पहले से ही मानकर चलो।
हाँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये लोग अनजाने में ऐसा करते हैं, उन्हें सही गलत की समझ नहीं, तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें बस अपना काम करना चाहिए। और यहीं पर वो आंतरिक गढ़ या इनर सिटेडल का आइडिया लाते हैं।
इनर सिटेडल मतलब?
मतलब हमारा मन एक किले की तरह है, बाहरी चीजें हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हम अपने विचारों और अपने फैसलों पर काबू रखते हैं, वो अंदर घुस ही नहीं सकती।
वाह, ये तो बड़ा शक्तिशाली विचार है, और यहीं पर वो स्टोइक फिलॉसफी का सबसे जरूरी सिद्धांत भी बताते हैं, नियंत्रण का द्वंद, है ना, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल।
हाँ बिल्कुल, यानी ये साफ साफ समझना कि क्या चीजें हमारे वश में हैं और क्या नहीं।
तो क्या है हमारे वश में?
हमारे अपने विचार, हमारे फैसले, हमारे काम करने का तरीका, ये सब हमारे वश में है।
और क्या नहीं है?
बाहरी दुनिया की घटनाएं, दूसरे लोग क्या करते हैं, हमारी सेहत कैसी रहेगी, हमारी इज्जत होगी या नहीं, ये सब पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मार्कस कहते हैं कि अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसी चीज पर लगाओ जो तुम्हारे वश में है, बाकी के लिए चिंता करना बेकार है।
लेकिन क्या ये इतना आसान है हमेशा ये फर्क करना? जैसे आपने कहा सेहत, कुछ हद तक तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आदतों से, है ना?
अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ हद तक कर सकते हैं। शायद मार्कस का मतलब ये है कि सेहतमंद रहने की कोशिश करना हमारे वश में है।
अच्छा, कोशिश।
पर बीमार पड़ना या ना पड़ना वो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, और अगर हम बीमार पड़ भी जाएं तो उस बीमारी पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, क्या हम घबरा जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, या शांति और हिम्मत से उसका सामना करते हैं, ये हमारे वश में है।
हाँ, ये बात सही है, जोर प्रतिक्रिया पर है।
बिल्कुल। फिर बुक 4 और 7 में वो इस बात पर आते हैं कि हमारा दुख वो बाहरी घटनाओं से नहीं आता।
तो फिर किससे आता है?
वो आता है उन घटनाओं के बारे में हमारे अपने फैसलों से, हमारी राय से। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं।
वाह, हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं।
हाँ, वो सलाह देते हैं कि चीजों को एकदम न्यूट्रल होके देखो, बिना अपनी भावनाओं की परत चढ़ाए। जैसे कोई बहुत लजीज पकवान है।
हाँ,
असल में वो क्या है, बस एक मरी हुई मछली या चिड़िया का मांस।
ये सुनने में थोड़ा अजीब है।
हाँ, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मकसद चीजों की असलियत देखना है, बिना उन्हें बढ़ा चढ़ाकर अच्छा या बुरा माने, बस जो है सो है।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें एकदम भावनाहीन, इमोशनलेस हो जाना चाहिए?
शायद भावनाहीन नहीं, पर भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, खासकर गुस्सा या तेज दर्द जैसी भावनाओं के लिए वो तर्क यानी रीजन का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
गुस्से के लिए तर्क?
हाँ, गुस्से को तो वो एक तरह की कमजोरी और बेवकूफी मानते हैं। वो कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो सोचो, गुस्सा करने से क्या हासिल होगा, क्या ये तर्क संगत है, क्या ये सिचुएशन को बेहतर बनाएगा?
नहीं बनाएगा शायद।
बिल्कुल। वो भावनाओं के सोर्स को समझने पर जोर देते हैं, जो अक्सर हमारी अपनी गलत सोच या गलत उम्मीदें होती हैं, और फिर उसे ठीक करने पर।
समझ गया। अच्छा, फिर बुक 5 और 8 में वो कर्म पे, एक्शन पे जोर देते हैं।
हाँ, अपना फर्ज निभाने पर, मार्कस खुद को सुबह बिस्तर में पड़े रहने पर टोकते हैं। कहते हैं, उठो, वो काम करो जिसके लिए इंसान बने हैं, यानी समाज के लिए उपयोगी बनना। और यहीं पर वो एक और कमाल का विचार रखते हैं, कर्म में बाधा कर्म को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है।
जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है, ये तो बहुत गहरी बात है।
है ना? मतलब मुश्किलें या रुकावटें असल में हमें रोकने के लिए नहीं है, वो हमें धैर्य, रचनात्मकता, हिम्मत, ये सब गुण सिखाने का मौका देती हैं।
तो मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकती है।
हाँ, अगर हम अपना नजरिया बदलें। यही वो अमोर फैटी की भी बात करते हैं।
अमोर फैटी यानी
भाग्य से प्रेम, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ सहना नहीं, उसे स्वीकार करना और यहाँ तक कि उससे प्यार करना, ये मानना कि ये शायद ब्रह्मांड की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है।
ये तो बहुत ऊंची सोच है, इसे अपनाना मुश्किल होगा।
मुश्किल तो है, पर शायद यही शांति का रास्ता है। और फिर आखिर की बुक्स जैसे 6 और 12, वो हमें लगातार याद दिलाती हैं जीवन की क्षणभंगुरता की, कि जीवन छोटा है और मौत निश्चित है। मेमेंटो मोरी,
मौत को याद रखना।
हाँ, चाहे सिकंदर महान हो या उसका मामूली सा खच्चर चलाने वाला, मौत के आगे सब बराबर है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
ये सोच कहीं डराती तो नहीं?
नहीं, इसका मकसद डराना नहीं है, इसका मकसद है हमें जगाना, हमें नाम, शोहरत, दौलत जैसी फालतू चीजों के पीछे भागने से रोकना।
अच्छा,
अगर सब कुछ पल भर का है तो फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ना, दूसरों से जलना या सिर्फ अपनी तारीफ के लिए जीना, कितना बेमानी है ना?
हाँ, बात तो सही है।
वो सलाह देते हैं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी दिन हो।
हर दिन?
हाँ, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे या घबराहट के, और जब अंत आए तो उसे शांति से स्वीकार करो, जैसे एक पका हुआ फल पेड़ से गिरता है उस जमीन का शुक्रगुजार होते हुए जिसने उसे पोसा।
वाह, तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की थीम्स उभर कर आ रहे हैं। पहला तो शायद वही है, नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकॉटमी ऑफ कंट्रोल।
हाँ, सबसे जरूरी
ये समझना कि क्या सच में हमारे हाथ में है और क्या नहीं। हमारे विचार, हमारे इरादे, हमारे काम, ये हमारे हाथ में है,
और बाकी सब
ट्रैफिक जैम, मौसम, दूसरे लोग क्या सोचते हैं या नहीं। अब जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम तो रोज की बात है।
हाँ बिल्कुल,
उसमें फंसकर गुस्सा करना, हॉर्न बजाना, ये हमारी एनर्जी बर्बाद करता है। मार्कस शायद कहेंगे, ये जाम तुम्हारे काबू में नहीं है, लेकिन शांत रहना, शायद 2 पॉडकास्ट सुन लेना या बस धैर्य रखना, ये तुम्हारे काबू में है।
बिल्कुल, ये जानने से ही कि फालतू चीज पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, दिमाग को कितना सुकून मिलता है।
सही कहा। दूसरी बड़ी बात है धारणा की शक्ति, पावर ऑफ परसेप्शन।
हाँ, कि घटनाएं खुद हमें दुखी नहीं करती,
बल्कि
उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच, हमारी राय हमें दुखी करती है। मान लीजिए कोई इम्तिहान में फेल हो गया, ये घटना है। अब इस पर आपकी राय क्या है? मैं बेकार हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये राय दुख देगी।
और दूसरी राय?
ठीक है, मैं फेल हुई, कहाँ कमी रह गई, अगली बार बेहतर करूंगी, ये राय आगे बढ़ने की ताकत देगी। ये तो बिल्कुल मॉडर्न CBT जैसा है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
हाँ बिल्कुल, अपने विचारों को बदलकर अपनी भावनाओं को बदलना। कमाल है कि ये विचार कितना पुराना है,
है ना? तीसरा, मेमेंटो मोरी, मौत को याद रखना।
ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है।
हाँ, पर इसका मकसद डराना नहीं है, जगाना है। अगर हमें पता हो कि जिंदगी छोटी है तो क्या हम अपना कीमती वक्त फालतू झगड़ों में, सोशल मीडिया पर बहस करने में या ऐसी चीजों के पीछे भागने में लगाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं?
नहीं लगाएंगे शायद।
ये हमें आज इसी पल में सार्थक काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन का भी एक अच्छा इलाज हो सकता है।
ये भी सही है।
और चौथा है, मानव समुदाय के प्रति कर्तव्य, ड्यूटी टू कम्युनिटी। मार्कस बार बार कहते हैं कि हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, हम एक बड़े शरीर के अंगों की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। हमारा काम है मिलकर सहयोग करना, समाज की भलाई के लिए काम करना,
भले ही लोग मुश्किल हों।
हाँ, भले ही दूसरे लोग कभी कभी मुश्किल लगें या बेवकूफ लगें। भारत में तो ये कम्युनिटी वाली भावना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का रिवाज बहुत गहरा है।
हाँ ये तो है।
मार्कस इसी को एक फिलोसॉफिकल बेस देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना या समाज से कटकर रहना, ये हमारी अपनी इंसानी प्रकृति के ही खिलाफ है।
हाँ, मुश्किल लोगों के साथ सहयोग करना हमेशा आसान नहीं होता, पर ये याद रखना शायद मददगार हो कि हमारा मूल स्वभाव सहयोग का है।
बिल्कुल।
वाकई इस किताब में ऐसी पंक्तियां भरी पड़ी हैं जो सीधे असर करती हैं, जैसे ये वाली, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। कितना सीधा और कितना पावरफुल।
हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, तुम्हारे जीवन की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालता है हमारे ऊपर। खुशी बाहर से नहीं आएगी, वो अंदर से आएगी, हमारी सोच से।
मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, एक बनो। ये स्टोइक सोच का प्रैक्टिकल पहलू दिखाता है। बातें कम, काम ज्यादा। फिलॉसफी सिर्फ पढ़ने या सोचने के लिए नहीं है, जीने के लिए है।
सही कहा। और मुश्किल लोगों से निपटने के लिए ये सलाह तो कमाल की है। सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम उस व्यक्ति जैसे न बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है।
वाह, मतलब किसी की बुराई का जवाब बुराई से देना खुद को ही गिराना है।
हाँ, अपनी नैतिकता बनाए रखना ही असल जीत है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन महान विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस भागदौड़ में लागू कैसे करें?
हाँ, क्या कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं?
हाँ, मार्कस खुद कुछ तरीके अपनाते थे जिन्हें हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है सुबह का चिंतन। दिन शुरू करने से पहले कुछ मिनट निकालकर सोचना, आज क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कैसे लोगों से मिलना पड़ सकता है, और मैं शांत और तर्कसंगत कैसे रहूंगी। एक तरह की मेंटल तैयारी,
मेंटल वार्म अप जैसा,
हाँ कह सकते हैं। दूसरा, तटस्थ होकर लिखना, ऑब्जेक्टिव जर्नलिंग, जैसे मार्कस खुद कर रहे थे। जब कोई चीज परेशान करे तो उसे डायरी में लिखें, लेकिन बिना किसी भावनात्मक भाषा के, सिर्फ फैक्ट्स। मेरे बॉस ने मुझ पर चिल्लाया नहीं, बल्कि मीटिंग में बॉस की आवाज ऊंची थी और उन्होंने मेरे काम से असहमति जताई।
अच्छा, इससे क्या होगा? इससे चीजों को ज्यादा साफ देखने में मदद मिलती है, इमोशनल रिएक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा, ऊपर से देखना, व्यू फ्रॉम अबव। ये बड़ा दिलचस्प है। जब कोई परेशानी बहुत बड़ी लगे तो कल्पना करें कि आप बहुत ऊंचाई, जैसे स्पेस से उसे देख रहे हैं।
स्पेस से?
हाँ, पूरी पृथ्वी, शहर और उसमें अपनी छोटी सी जगह, और अपनी उस परेशानी को देखें। अक्सर इससे चीजों का सही पर्सपेक्टिव मिलता है और वो उतनी बड़ी नहीं लगती।
हाँ, ये तो कमाल का तरीका है। अगली बार जब ऑफिस की ईमेल से परेशान होऊंगा तो ये नजरिया अपनाऊंगा, शायद वो इनबॉक्स उतना डरावना न लगे।
बिल्कुल, ये तकनीकें असल जिंदगी में बहुत काम आ सकती हैं, ऑफिस के प्रेशर को झेलने में, जहां हम नतीजों पर, जो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं, फोकस करने के बजाय अपने प्रयासों पर, जो हमारे हाथ में है, उस पर ध्यान दे सकते हैं।
हाँ।
मुश्किल सहकर्मियों या रिश्तेदारों से डील करते समय उनके व्यवहार को पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय इसे अपने धैर्य और समझ को बढ़ाने का एक मौका समझ सकते हैं।
सही।
या जब जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगे, कोई नुकसान हो, तो पूरी तरह बिखरने के बजाय इन सिद्धांतों से मिली अंदरूनी ताकत से खुद को संभाल सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक खुद हैं।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से और मार्कस ऑरेलियस के विचारों से सबसे बड़ी सीख यही है कि असली आजादी और मन की शांति वो बाहरी हालात पर नहीं टिकी है।
नहीं,
वो पूरी तरह हमारी अंदरूनी दुनिया पर, हमारे विचारों पर, हमारे नजरिए पर, हमारे फैसलों पर निर्भर करती है। और ये जानना ये अपने आप में कितना सुकून देता है, कितनी ताकत देता है। एक आखिरी सवाल जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा, अगर हम सचमुच अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो हमारे वश में है, हमारे विचार और हमारे काम, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है।
सोची और लिखी वो आज भी इतनी सटीक, इतनी व्यवहारिक और इतनी मददगार कैसे हो सकती हैं? ये हमें याद दिलाता है कि दर्शन कोई पुरानी धूल भरी किताबों का विषय भर नहीं है।
नहीं।
ये जीने का एक तरीका है, एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल मची हो, हम अपने अंदर शांति, हिम्मत और एक मकसद पा सकते हैं। शायद यही वजह है कि मेडिटेशंस आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।